ओम शांति। संगम युग में बाबा ने हम बच्चों को ये ब्राह्मण जीवन दिया और इस ब्राह्मण जीवन को कहा ही जाता है दिव्य जीवन। कितने न सौभाग्यशाली है हम सभी आत्माएं जो इस दिव्य जीवन को ईश्वर द्वारा वरदानों से भरपूर करने का अवसर प्राप्त करते हैं। यह दिव्य जीवन की दिव्य गिफ्ट कहो जो बाबा जन्मते ही हम बच्चों को दे देता है वो है दिव्य बुद्धि। जिस दिव्य बुद्धि के माध्यम से आत्मा जितना ऊंचाई को प्राप्त करना चाहती है उसको कर सकते हैं, साथ ही साथ पुरुषार्थ में जितनी तीव्रता लाना चाहते हैं ला सकते हैं। वर्तमान समय के हिसाब से बाबा ने यह आध्यात्मिक प्रज्ञा के चक्षु हमारे खोले हैं, दिव्य बुद्धि के चक्षु हमारे खोले हैं, जिससे हम जीवन के अंदर बहुत ऊंचाइयों को छू सकते हैं। दुनिया में मनुष्य स्थूलता में जितना आगे बढ़ना चाहते हैं बढ़ जाते हैं, लेकिन इस दिव्य बुद्धि से सूक्ष्म स्तर पर हम जितना आगे बढ़ना चाहे बढ़ सकते हैं। परंतु इस दिव्य बुद्धि का वरदान जो हमें प्राप्त हुआ, ये दिव्य बुद्धि वास्तव में है क्या चीज और कैसे काम करती है? दिव्य बुद्धि जब हम कहते हैं तो हमेशा बाबा के वो महावाक्य याद आते हैं कि दिव्य बुद्धि मना हंस बुद्धि। सबसे पहली भेंट उसके साथ की जाती है हंस के साथ, कि जिस तरह हंस नीर और क्षीर को, पत्थर और कंकड़ को, कीचड़ और रत्न को अलग कर सकता है, वो बुद्धि बाबा हमें प्रदान करते हैं। लेकिन हंस माना स्वच्छता का प्रतीक, तो ये बुद्धि तभी काम करती है जब हमारी बुद्धि भी क्लीन एंड क्लियर है। इतनी स्वच्छ हो बुद्धि कि जिसमें कोई भी प्रकार का कीचड़ा मन के अंदर न हो, व्यर्थ का कीचड़ा कहो, पर चिंतन पर दर्शन का कीचड़ा कहो, या अनेक प्रकार की अशुद्धियों का कीचड़ा कहो, उससे हमारी बुद्धि मुक्त हो, तब ये हंस बुद्धि बन सकती है। नहीं तो जैसे कई बार हम मुरली के महावाक्यों में भी बाबा कहते हैं बुद्धि का, दुनिया के अंदर जब हम थे तो पहले हमारी बुद्धि कैसी थी? चंचल बुद्धि को बाबा ने कहा बंदर बुद्धि थे, मोटी बुद्धि को बाबा कहते भैंस बुद्धि है, और कौन सी उपमा मिली है ना? तो चंचल बुद्धि कहो, भैंस बुद्धि कहो या डल बुद्धि, जो विकसित ही नहीं है उसको बाबा कहते ऐसी बुद्धि वाले थे हम, जो एकदम गंध को हमेशा चुभते रहते थे और वही चीज अपने बुद्धि के अंदर भरते जाते थे। लेकिन ऐसी बुद्धि वालों को जैसे ही ये दिव्य जन्म प्राप्त हुआ कि सबसे पहले बाबा ने हमारे दिव्य चक्षु, दिव्य बुद्धि को खोल दिया। दिव्य चक्षु कहते हैं तो दिव्य दृष्टि को नहीं कहा जाता। यज्ञ के अंदर शुरू में जब लोगों को साक्षात्कार हुआ तो वो दिव्य दृष्टि का वरदान बाबा ने दिया था, लेकिन उसके बाद बाबा ने दिव्य बुद्धि का वरदान दिया जिससे ज्ञान का तीसरा नेत्र हमारा खुल गया और हमें तीसरा नेत्र या दिव्य चक्षु प्राप्त हुआ, जिस दिव्य बुद्धि से हम ज्ञान के गुह्य से गुह्य रहस्य को, महीन से महीन रहस्य को भी स्पष्ट समझने लगे। जो चीजें इन चरम चक्षु से देखी नहीं जा सकती है, उन सूक्ष्म विषयों को समझने की बुद्धि या समझ प्राप्त हो गई। दुनिया में इसी बुद्धि को लोग जब समझते नहीं हैं, तो हमेशा प्रयोग करते हैं, हमारा दिल ये कहता है, हमारी भावना ये है। तो एक है मन जो लॉजिक सोच सकता है, लेकिन बुद्धि का कनेक्शन हमेशा दिल से है। तो दिल और दिमाग जब कहते हैं तो दिमाग का कनेक्शन मन के साथ है, लॉजिकल सोचता है, लेकिन जब दिल कहते हैं तो ये बुद्धि के साथ, कि मेरा दिल ये बात मानता नहीं है। क्यों? क्योंकि बुद्धि के पास ही परख शक्ति भी है, समझ शक्ति भी है, हर बात को समझने की शक्ति बुद्धि के पास है, और इसलिए बुद्धि जब उस बात को स्वीकार नहीं कर पाती है, भले कोई कितने भी लॉजिक प्रदान कर दे, मन अनेक प्रकार के लॉजिक प्रदान कर देती है, लेकिन बुद्धि यानी दिल जब उसके पास ये सूक्ष्म को पहचानने की समझ आ जाती है तो उस बात को स्वीकार करने की तैयारी उसकी नहीं होती है। और इसीलिए कभी कभी दिल और दिमाग के बीच में एक लड़ाई चलती है, क्योंकि बुद्धि माना जहां विवेक समाया हुआ है, तो विवेक से जब हम सोचने लगते हैं तो कहते हैं नहीं, लॉन्ग रन में शायद ये नुकसान कर सकता है। मन कभी कभी इमीडिएट प्रेजेंट को देखता है और इमीडिएट प्रेजेंट को देख करके वो करने के लिए हमें प्रेरित कर देता है, लेकिन बुद्धि के अंदर सद्विवेक है और ये सद्विवेक हमेशा राइट और रॉन्ग का जजमेंट देता है। इसीलिए कहा बुद्धि के पास निर्णय शक्ति है, लेकिन ये निर्णय शक्ति का कार्य तभी करती है जब सद्विवेक को जागृत किया हो, तब वो बुद्धि काम करती है। इसीलिए जब कोई व्यक्ति पहली बार जीवन में कोई बुरा काम करने जाता है तो उसका मन कचोटता है। अंदर मन कभी कभी कह भी देता है, कोई बात नहीं, चलता है। लेकिन अगर उस बुद्धि के अंदर सद्विवेक है तो वो दिल मानता नहीं है, उसको बार बार रोकने का प्रयास करता है। इसीलिए कहते हैं कि व्यक्ति को जब भी कोई बुरा कार्य करना होता है तो सबसे पहले उसको अपनी बुद्धि को मारना पड़ता है, सद्विवेक का खून करना पड़ता है, नहीं तो वो बार बार बीच में खड़ी होती है और उसका रास्ता रोकने का प्रयास करती है, उसको वो कार्य करने नहीं देना चाहती है, इसलिए उसको अपने सद्विवेक को मारना पड़ता है। और एक बार जब उसको मार देते तो फिर वो कार्य करना बंद कर देता है, फिर उसके बाद वो बुराइयों की ओर ही खींचता चला जाता, और कितने भी बुरे काम करे तो भी उसका मन उसको खाता नहीं है। कभी कई बार किसी को जब बहुत बुराइयों का सहारा लेते हुए देखते हैं तो कई लोगों के मन में ये विचार आता है कि क्या कभी उसका कॉन्शियस उसको खाता नहीं है, उसका सद्विवेक उसको रोकता नहीं है, कैसे कर सकते हैं ये इतना बुरा कार्य। लेकिन सद्विवेक को मार दिया है तो रोकेगा कहां से, वो दिव्य बुद्धि काम ही नहीं करती है, इसलिए उसको रोकने का प्रयास नहीं करता है। सिंपल सी बात होती है, कई बार आप देखते हैं किसी व्यक्ति को झूठ बोलते हुए, और जब वो झूठ बोलते हैं, पहली बार जब झूठ बोलते हैं ना, तो पसीना पसीना आ जाता है, लेकिन उसको अपने सद्विवेक को मारना पड़ता है। और जब मार देते हैं उसके बाद बड़ी सफाई से झूठ बोलते थे, उसके चेहरे पर एक रेखा तक नहीं आती है। और तब जब सत्य प्रकट होता है तो क्या कहते हैं, कितनी सफाई से उसने इस बात का झूठ बोला, चेहरे पर भी एक रिंचक मात्र रेखा तक नहीं आई, और कार्य कर गया। समझ में ही नहीं आता है कैसे किया उसने, कैसे उसका दिल उस समय उसको खत्म नहीं करता है या अंदर में मना नहीं करता है कि ये नहीं करना चाहिए। ऐसे कई एग्जाम्पल हम दुनिया के अंदर देखते हैं, परंतु बाबा के बच्चे बनने के बाद बाबा सबसे पहले हमें ये दिव्य बुद्धि का वरदान देता है, यानी जिस बुद्धि के ये चक्षु को हमने बंद कर दिए थे, बाबा ने ज्ञान से उसी चक्षु को खोल दिया, और वही परिवर्तन जब लोगों के अंदर दिखाई देता है तो कई बार लोग उस परिवर्तन को बिलीव नहीं कर सकते हैं, मान नहीं सकते हैं, इतना बदल सकता है। जो बात बात में झूठ बोलता था, बात बात में गलत करता था, आज ये इतना बदल कैसे गया। लेकिन ये कोई मनुष्य शक्ति नहीं है, लेकिन ये परमात्मा का वरदान प्राप्त है, तभी परिवर्तन को हम इतना जीवन के अंदर अपना सकते हैं। ज्ञान के माध्यम से बाबा ने हमें इतनी महसूसता कराई है आत्मा के यथार्थ स्वरूप की महसूसता, ज्ञान के हर एक पहलू को जब हमने महसूस करके जीवन के अंदर धारण किया तो धीरे धीरे हमारी बुद्धि निखरने लगी, और निखरते निखरते जितनी क्लीन एंड क्लियर होती गई, स्पष्ट होती गई, स्वच्छ होती गई, तो हंस बुद्धि बनने लगे। और ऐसे जब हंस बुद्धि बन जाते हैं तो नेचुरल है यथार्थ और अयथार्थ को सहजता से परख सकते हैं, और हमें क्या चुनना है अपने जीवन के लिए ये स्पष्ट हो जाता है। जिस तरह से महाभारत के अंदर दुर्योधन ने कहा कि धर्म क्या है मैं जानता हूं, अधर्म क्या है वो भी मैं जानता हूं, लेकिन धर्म के मार्ग पर चलने की मुझ में शक्ति नहीं है, और अधर्म को मैं छोड़ सकूं ये भी नहीं हो सकता है। तो आज दुनिया के अंदर भी हर कोई जानता है यथार्थ क्या है अयथार्थ क्या है, धर्म क्या है अधर्म क्या है, लेकिन बुद्धि के अंदर ताकत नहीं है। और जब बुद्धि के अंदर शक्ति नहीं है तो जानते हुए भी यथार्थ को अपना नहीं सकते, या उस मार्ग पर चलने की हिम्मत नहीं होती है। ज्ञान हमारे अंदर हिम्मत भरती है। कैसे हिम्मत भरती है ज्ञान हमारे अंदर? क्योंकि ज्ञान के एक एक रहस्य को जब हम स्पष्ट समझने लगते हैं हंस बुद्धि के माध्यम से, वो ज्ञान को ग्रहण करते गए तो आत्मा में शक्ति आने लगी, उस शक्ति से यथार्थ पर चलने की हमारे अंदर हिम्मत आती है। तो इसीलिए जितना हंस बुद्धि बनते जाते, ज्ञान को ग्रहण करते जाते, ज्ञान के मोती को चुकते जाते हैं, उतना ही आत्मा शक्तिशाली बनने लगती है, हिम्मत आ जाती है अच्छाई के तरफ जाने की, सही चुनाव जीवन के अंदर करने की कि मुझे अपने जीवन के अंदर क्या करना है क्या नहीं करना। तो कहां भैंस बुद्धि चंचल बुद्धि थे, वहां से बाबा ने हमें हंस बुद्धि बनाया था, और उस हंस बुद्धि से कितने अच्छे ज्ञान की बातों को चुपते हुए ग्रहण करते हुए हम अपनी बुद्धि को क्लीन एंड क्लियर कर देते हैं, क्रिस्टल क्लियर कर देते हैं। साथ ही साथ जितनी हमारी हंस बुद्धि बनती जाती है तो उसका प्रमाण क्या, स्थिरता आती है। स्थिर बुद्धि सहज बन जाते हैं। बैलेंस के अंदर जब बीच का कांटा स्थिर हो गया तो यथार्थ निर्णय है। ठीक इसी तरह जब हमारी बुद्धि भी जितनी हंस बुद्धि होंगी तो स्थिर होंगे, अस्थिरता चंचलता के साथ जुड़ी हुई है। तो जितना व्यक्ति बंदर बुद्धि है, बंदर माना अशुद्धि, बगुला है, अशुद्धि को चुकता है, उतनी उसकी बुद्धि भी अस्थिर रहती है। लेकिन हंस बुद्धि बनते ही हमारी बुद्धि स्थिर बुद्धि बनने लगती है, और जितनी व्यक्ति के अंदर स्थिरता यानी गंभीरता धैर्यता आने लगती है उतने हर कार्य करने के अंदर सक्षम हो जाते हैं। इसीलिए दिव्य बुद्धि को कहा जाता है कुशाग्र बुद्धि। खाली कुशाग्र नहीं, लेकिन दिव्यता होने के कारण बुद्धि के क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। अगर बुद्धि की क्षमता नहीं है, दिव्यता नहीं है उसके अंदर, तो दुनिया में भी कुशाग्र बुद्धि वाले देखते हैं, लेकिन वो रॉन्ग पर्पसेस के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, गलत दिशा में विकृतियों की ओर अपनी बुद्धि को प्रयोग करने लगते हैं। है कुशाग्र बुद्धि लेकिन दिव्य नहीं है, इसीलिए विकृत या विकृति की ओर जाते हैं। आज दुनिया के अंदर जो बॉम्ब्स बनाने वाले हैं, टेररिस्ट है, कुशाग्र बुद्धि है लेकिन विकृति की ओर मुड़ गए, क्योंकि दिव्यता नहीं है बुद्धि के अंदर। तो बाबा ने सबसे पहले हमें आकर के यही तो वरदान दिया ब्राह्मण जीवन का, कि हमारी बुद्धि के अंदर दिव्यता भर दी। इसीलिए कुशाग्र होने के साथ साथ वो बुद्धि की क्षमता को दिव्यता के मार्ग पर लगाते हैं। तो जितनी दिव्यता आती जाती है अंदर में, ये दिव्य गुण धैर्यता और गंभीरता को ले आते, जो हमें अंदर से स्थिरता प्रदान करती है। अर्जुन ने भी गीता के अंदर भगवान से यही पूछा, दूसरे अध्याय में, कि लोगों की बुद्धि विचलित क्यों हो जाती है। तब भगवान ने यही उत्तर दिया उनको कि लोगों की बुद्धि विचलित इसीलिए हो जाती है क्योंकि इंद्रियों के अधीन है। इंद्रियों के अधीन है ये, इंद्रियां उनको खींच रही है अनेक दिशाओं में, और इसीलिए जब इंद्रियों के अधीन हुए, विषयों में आसक्त हुए, यानी कोई न कोई विषय में आसक्त होने लगे, चाहे कोई अच्छी चीज देखी, अच्छी बात देखी, उस विषय की ओर उसकी बुद्धि आकर्षित हुई, आसक्त हुए, तो आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है। वो कामना पूरी नहीं हुई तो क्रोध की उत्पत्ति होती है। क्रोध से व्यक्ति का सद्विवेक नष्ट होता है, विवेक काम नहीं करता है, वो क्रोध में आकर के क्या शब्द बोलता है उसका भी उसको पता नहीं चलता है। तो क्रोध से अविवेक जागृत होता है और अविवेक से योग परायण बुद्धि, स्मृति भ्रष्ट हो जाती, स्मृति नष्ट होती है। तो जो ईश्वरीय स्मृति रहनी चाहिए वो स्मृति नहीं रहती है, और स्मृति नष्ट हुई, मेमोरी पावर ही नष्ट होने लगता है, तो उससे योग परायण बुद्धि नष्ट हो जाती है। जो स्थिरता उस बुद्धि के अंदर आने लगती है वो स्थिरता ही समाप्त हो गई। तो इसीलिए कहा कि व्यक्ति की बुद्धि, कई बार हम कहते ना, इतनी भी इसकी बुद्धि काम नहीं करती है, तो क्यों नहीं करती है? कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंद्रियों के अधीन हुआ। जड़ में क्या है? इंद्रियों की अधीनता। कहां देखने की अधीनता है, कहां सुनने की अधीनता है, कहीं कुछ भी बोलने की अधीनता है, स्पर्श की अधीनता है। तो बाबा कहे ये अधीनता जब व्यक्ति के अंदर है तो उसकी बुद्धि स्थिर कहाँ रह सकती है, इसीलिए बुद्धि की स्थिरता नहीं रहती है। तो बाबा ने आकर के सबसे पहले हमें इंद्रियों के ऊपर अधिकार प्राप्त कराया। बार बार हमें ये कहा कि हे आत्म, तू मालिक है शरीर का, इन कर्मेंद्रिय का तुम अधिकारी है, और ये जागृति ही, जितनी ये जागृत रूप में रहेगी उतनी हमारा इंद्रियों के ऊपर अधिकार स्वतः आने लगेगा, और तब हमारी अधीनता समाप्त होने लगेगी, और ये अधिकारीपन ही हमें अंदर से स्थिरता प्रदान करता है, योग परायण बुद्धि को सक्षम कर देता है। बुद्धि के ऊपर जो जंक चढ़ा हुआ है वो जंक को समाप्त करता है, क्योंकि जितना हम आत्मा अधिकारी स्वरूप में आती है उतना ही हमारा योग बाबा से सहजता से लग सकता है। तो बाबा की शक्ति वो सारा जंक उतार देती है, समाप्त कर देती है। इसीलिए सबसे पहले हंस बुद्धि, और हंस बुद्धि इंसान ही स्थिर बुद्धि होता है। अच्छा, जो स्थिर बुद्धि होता है वही प्रीत बुद्धि हो सकता है। ईश्वर के साथ की प्रीत, प्रभु प्रीत तभी होती है हमारी। अगर बुद्धि इंद्रियों के पीछे ही भटक रही है, भाग रही है, तो बाबा से प्रीत हो सकती है क्या हमारी? बाबा से कभी प्रीत नहीं हो सकती है। वो लगन हमारी बाबा के साथ जुड़ नहीं सकती है, क्योंकि इंद्रियों के अधीन है। तो इंद्रियों की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए वो बुद्धि बाहर भटक रही है। चाहे व्यक्तियों से इच्छा है तो व्यक्तियों के पीछे भटक रही है, चाहे कोई वैभव की इच्छा है तो वैभव के पीछे बुद्धि भटक रही है। इसीलिए जो स्थिर बुद्धि बनता है, स्थित प्रज्ञ जिसको कहा गीता के अंदर, प्रज्ञ स्थित हो गया, एकदम स्थिर हो गया। तो ऐसे स्थिर बुद्धि जो बनता है, ये जो आसक्तियां हैं, ये जो लगाव है व्यक्तियों की, वस्तुओं की, चीजों की, उससे जब हमारी बुद्धि समेट लिया, तब वो बुद्धि जैसे कछुआ की तरह अपनी इंद्रियों को यूज भी करता है, लेकिन इंद्रियों को संकीर्ण करना भी आता है। और जैसे ही संकीर्ण किया तो उसका ईश्वर के साथ का प्यार सहजता से हो सकता है। तब कहा जाता है कि जो योगी होता है उसकी स्थिति कैसी होती है, उसकी अवस्था कैसी होती है, तो कहा इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति। इच्छा मात्रम अविद्या, मिला तो भी ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक। उन इच्छाओं से, भौतिक दुनिया की इच्छाओं से वो न्यारा सहज बन सकता है, क्योंकि इंद्रिय जीत है। इसीलिए इंद्रियों के ऊपर अधिकार है। तभी कहा जाता कि योग से सबसे पहले प्राप्ति क्या होती है, योग हमें सुसंस्कृत करने का विज्ञान है। इट इज अ साइंस ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। अपनी इंद्रियों को मास्टर करने के लिए एक विज्ञान है, यानी हम अंधश्रद्धा से उसके ऊपर दमन नहीं करते हैं, लेकिन समझ से, साइंस माना क्या, समझ, और समझ से उसके ऊपर अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। तो जो स्थिर बुद्धि हुआ, फिर उसमें जैसे जैसे परमात्मा ज्ञान को समाते जाते हैं तो परमात्मा से हमारी प्रीत जुड़ने लगती है। तब कहा प्रीत बुद्धि विजयंती, सच्चा पांडव तभी हम बनते हैं। बिना दिव्य बुद्धि के पांडव नहीं बन सकता है, वो कौरव ही होगा या कौरव साइड में ही बैठेगा। इसीलिए दुनिया में दिखाते हैं कि बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष, द्रोणाचार्य जैसे गुरु या भीष्म पितामह जैसे ब्रह्मचारी व्यक्ति भी, लेकिन थे किसके तरफ, कौरव के तरफ थे। क्यों? क्योंकि उनकी वो बुद्धि दिव्य नहीं हुई। कोई ना कोई कारण से, कहीं ना कहीं अंदर में कोई ना कोई, चाहे स्थूल में प्रतिज्ञा के कारण, भीष्म पितामह भाई मैं ये कुर्सी से बंधा हुआ हूँ, ये शासन से बंधा हुआ हूँ, इस राज्य से बंधा हुआ हूँ, मजबूरी जहाँ आ गई। इसीलिए बाबा हमें हमेशा ये स्लोगन देते, बच्चे मजबूर नहीं मजबूत बनो, दृढ़ संकल्प को बढ़ाओ। दृढ़ता जितनी अपनी बुद्धि के अंदर आती जाती है तो वो दृढ़ता की शक्ति से ही आत्मा मजबूत हो जाती है कि कोई उसको फिर कोई भी व्यर्थ कार्य की ओर भी आकर्षित नहीं कर सकता है। और ऐसा दृढ़ संकल्पधारी जो होता है उसी की ही उस ईश्वर से प्रीत होती है, परमात्मा प्रीत। बाबा की मुरली वो सबको याद होगी कि जिसकी ईश्वर से प्रीत है वही सच्चा मन का मीत है, यथार्थ रीत है। तो उसके गीत क्या होंगे, उसके गीत भी वैसे ही उड़ाने वाले, उड़ती कला की ओर ले जाने वाले होंगे, क्योंकि परमात्मा प्रीत ऐसी है। तो इसीलिए कहा जहां अधीनता छूटी वहां अधिकारी बने तो ईश्वर से प्रीत करना आसान हो गया। जब तक दुनिया के लोगों की प्रीत है वो भी हमें अधीन करती है। आज ये व्यक्ति, इसीलिए तो बाबा नष्ट मोहा बना रहा है। क्यों बनाता है बाबा नष्ट मोहा? क्योंकि दुनिया से जब तक हमारे मोह की रगे टूटेगी नहीं तब तक ईश्वर के तरफ प्रीत हमारी लगेगी नहीं, जुटेगी नहीं। तो दिव्य बुद्धि प्रीत बुद्धि है। हम सबका ये अनुभव है कि ज्ञान में शुरू शुरू के दिनों को आप याद करो, कितने भी विघ्न आए, कितनी भी बातें आई, कितनी भी परिस्थिति आई, लेकिन इतना उमंग उत्साह था कि उस उमंग उत्साह के कारण आपने सारे पेपरों को सहजता से पार कर दिया। कितना भी लोगों ने आपको रोकने का प्रयास किया, नहीं जाना है वहां नहीं जाना, उतनी आपकी लगन बढ़ती गई, क्योंकि उस समय एक बाबा दूसरा न कोई, वो विश्वास था, वो प्रीत इतनी मजबूत थी कि उस प्रीत के कारण दुनिया को ठोकर मारना आसान हो गया। हमें कोई भी हमें रोक नहीं सका, कोई भी हमारे पैर पीछे खींच नहीं सके। लेकिन हाँ, जिसकी मोह की रगे दुनियावी देहधारियों में थी, जैसे ही उन्होंने टांग खींचना चालू किया ज्ञान से चले गए, निकल गए। क्यों? क्योंकि कोई न कोई देहधारी के साथ उनकी प्रीत थी और वो प्रीत ने उनको प्रभु प्रीत करने नहीं दिया। और इसीलिए जब वो दिन याद करते हैं कि शुरू शुरू में पता नहीं क्या था, जैसे उड़ रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, इतने अच्छे अच्छे अनुभव होने लगे थे, बुद्धि जैसे बैठते थे और बाबा के साथ जुड़ जाती थी, वो स्थिति आज क्यों नहीं है? ये महसूस होता है कि जो ये शुरू की स्थिति थी वो आज नहीं है। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं हम देहधारियों से अटैच्ड होते जा रहे हैं, चाहे ब्राह्मण परिवार से ही अटैच्ड हो गए। फलाना व्यक्ति हमसे बहुत प्यार से बात करता है, बहुत प्यार करता है, उसके तरफ अटैचमेंट हो गया। ये भी एक सूक्ष्म माया का स्वरूप है, लेकिन उसको पहचान नहीं सके। और इसीलिए कहीं न कहीं किसी न किसी की अच्छाइयों से प्रभावित होकर के वहां ट्रैप्ड हो गए और ट्रैप्ड हो गए, और उसने जिस तरह से अटेंशन हमें देना चाहिए और नहीं दिया तो स्थिति क्या हो जाएगी। तो इसीलिए बाबा कहे कि अगर सचमुच पुनः वो स्थिति को अनुभव करना है जो आरंभ में थी, क्योंकि उस समय कोई ब्राह्मणों को हम जानते ही नहीं थे, जब जानते ही नहीं थे तो हमारे लिए सारा ब्राह्मण परिवार एक था, तो तो उड़ते थे, बाबा से प्रीत करना सहज हो गया, फिर धीरे धीरे नीचे आकर देखने लगे उसके ये गुण है, इसके ये अवगुण है, ये गुण है, ये अवगुण है। तो जहाँ गुण देखे वहाँ प्रभावित हो गए, और जहाँ अवगुण देखा वहाँ क्या हुआ, ऐसा करता है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। जबकि बाबा ने हमें, हम बच्चों को कह दे, बच्चे ड्रामा एकदम परफेक्ट है, कोई भी ऐसा क्यों कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, ये हमारे मन के अंदर क्वेश्चन उठना ही नहीं चाहिए। अगर ड्रामा के ज्ञान को यथार्थ रीति मैंने समझा है तो हर आत्मा अपना अपना पार्ट एक्यूरेट बजा रही है। लेकिन जैसे ही हमने अनेकों के पार्ट को देखते हुए व्यर्थ संकल्प पर चिंतन आरंभ किया, तो वो पर चिंतन ने क्या किया, हमारी दिव्य बुद्धि के अंदर क्या किया, जहर के बूंदे डालना शुरू किया, और इसीलिए हम नीचे आ गए। बहुत अच्छी एक बात याद आती है कि एक बार एक महात्मा था, भिक्षा मांगने गए कहीं, एक राजा के पास भिक्षा मांगी। अब उस दिन राजा के यहाँ कुछ हुआ था, वो बहुत गुस्से में था, इतना गुस्से में था, और उसी समय ये भिक्षा मांगने उसी के पास चला गया, तो उसको इतना गुस्सा आ गया, तो सारा गुस्सा जो मांगने वाला आया उसी के ऊपर निकाल दिया। तो वहां गोबर पड़ा था, गोबर उठा करके डाल दिया भिक्षा के रूप में। महात्मा तो चला गया, चला जाने के बाद उस भिक्षा को खाता तो नहीं, तो बाहर रख दिया और अपनी तपस्या में लीन हो गया। कुछ सालों के बाद जो है वही राजा जंगल में से गुजर रहा था, तो वहां एक बहुत बड़ा गोबर के उसका ढेर देखा, बहुत बड़ा, एक जैसे पहाड़ बन गया था, पहाड़ी जैसा हो गया था। तो वो देखा तो उसने कहा कि यहाँ जंगल में कोई गाय भैंस तो है ही नहीं, और इतना गोबर कहाँ से आ गया, यहाँ पर एक पहाड़ जैसा बन गया। तो वहां पास में ही कुटिया देखी, तो कुटिया के अंदर गया तो वहां वही सन्यासी को देखा, वही महात्मा को देखा। तो वो महात्मा से वो पूछता है कि महात्मा ने एक बात पूछना चाहता हूं मैं आपसे, वो तो भूल गया था कि ये वही महात्मा है। तो उसने कहा कि यहाँ आप जंगल में रहते हैं, कोई गाय भैंस नहीं है, फिर इतना बड़ा ये गोबर का पहाड़ यहाँ कैसे हो गया। तो वो महात्मा ने कहा कि एक बार मैं भिक्षा मांगने गया था एक राजा के पास, और राजा ने मुझे भिक्षा में यही गोबर दे दिया था, मैंने रख दिया, धीरे धीरे वो गोबर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और एक दिन आएगा जब वही राजा को ये स्वीकार करना पड़ेगा, ये कर्मों की ये गति है। राजा को उस वक्त वो बात याद आई कि हाँ, मैंने एक बार एक महात्मा को गोबर दे दिया था गुस्से में आकर के, और जब महात्मा ने कहा कि ये एक दिन आएगा जब वो राजा को यही गोबर खाना पड़ेगा, कि इसने खाने में मुझे वो दिया, ये अभी इतना मल्टीप्लाई हो गया, एक का 100 गुना जो बाबा कहते हैं मल्टीप्लाई हो जाता है, और वो उसको ही खाना पड़ता है। उसी समय उसने महात्मा के पैर पकड़ लिए और कहा, क्षमा कर दो मुझे इस बात के लिए, लेकिन अब ये विधि बताओ कि इस पहाड़ को मैं खत्म कैसे करूं, कैसे खत्म होगा ताकि मुझे स्वीकार न करना पड़े। तो महात्मा ने उसको विधि बताई कि आपको ऐसा कोई कर्म करना पड़ेगा जिससे, माना कर्म माना रियल में नहीं, लेकिन ऐसा दिखावा करना पड़ेगा कर्म करते हुए, जिसके आधार पर लोग आपकी ग्लानी करें, और जितनी वो आपकी ग्लानी करेंगे उतना ये पहाड़ धीरे धीरे उनके खाते में चला जाएगा और आपका खाता समाप्त हो जाएगा। तो राजा ने सोचा भी ऐसा कौन सा मैं कर्म का दिखावा करूं जिससे मेरी ग्लानी हो, लोग मेरे लिए उल्टा बोले। तो उसने शराब हाथ में लिया और नगर में शराबी बन करके घूमने लगा और खूब गालियां बोलने लगा और वो एक्टिंग करता गया। लोग जो भी देखे उस राजा को कहे, राजा को क्या हो गया, ये ऐसे कैसे हो गया, ऐसे शराबी कैसे, जबकि वो शराब पी नहीं रहा था, लेकिन ये शराबी कैसे हो गया, ये क्या कर दिया। लोगों ने चारों ओर इतनी बातें करना चालू किया कि राजा को कुछ हो गया है, इतनी उसकी ग्लानी करने लगे लोग। इतना परचिंतन होता गया, वो सारा गोबर फिर दूसरे दिन जब राजा जंगल में देखने गया तो बहुत कम रह गया था वो गोबर, सारा पहाड़ एक दिन के अंदर खत्म हो गया। तो जब हम भी किसी का परचिंतन करते हैं तो क्या कर रहे हैं, दूसरे का गोबर अपने खाते में ले रहे हैं। और पर चिंतन करने वाली अगर बुद्धि है तो परमात्मा प्रीत वो बुद्धि के अंदर कभी हो सकती है, सोचने की बात है। तो प्रीत बुद्धि नहीं बन सकते, और प्रीत बुद्धि ही नहीं तो विजयंती अपने विकर्मों के ऊपर विजय कैसे बन सकते हैं। जितनी बाबा से हमारी प्रीत अधिक होंगी तो बाबा की प्रीत ही वो सारे हमारे विकर्मों को जलाने की, जो एक का पदम गुना हमने कर लिया है उसको जलाने की विधि यही है। इसलिए बाबा कहते कि जब ऐसी लगन लगे, प्रीत माना ऐसी लगन ईश्वर के साथ लगे कि वो लगन अगन बन जाए और वो अगन बन करके ज्वाला स्वरूप अवस्था हो करके वो सारे किचड़े को जला देती है, सारा हमारा अकाउंट क्लियर कर देती है ना। तो इसीलिए हंस बुद्धि से स्थिर बुद्धि, और स्थिर बुद्धि जो बना वो क्या बन गया, प्रीत बुद्धि सहज बन जाता है। और जो प्रीत बुद्धि बन गया ना, वो निश्चय बुद्धि विजयंती। निश्चय बुद्धि कब होगा, नहीं तो निश्चय में संशय आता रहेगा, शक पड़ता रहेगा, पता नहीं मैं कर तो रही हूँ लेकिन कैसे होगा, पता नहीं ये हो रहा है लेकिन मैं कैसे कर सकूं, तो खुद के प्रति डाउट। प्रीत बुद्धि होगी, ईश्वर से प्रीत होगी तो उसके हर कर्म निश्चय सहित होगा, और निश्चय बुद्धि जो है वो विजयंती का अनुभव कराता ही है, विजयी। इसलिए प्रीत बुद्धि विजयंती, निश्चय बुद्धि विजयंती। तो निश्चय बुद्धि विजयंती माना किसी भी कर्म में कोई प्रकार के डाउट नहीं, कैसे होगा, क्या होगा, होगा नहीं होगा, कर तो रहे हैं लेकिन पता नहीं उसका फल क्या होगा, इसको निश्चय बुद्धि नहीं कहेंगे। कहीं ना कहीं जो चारों प्रकार के निश्चय बाबा ने बताए हैं, कहीं स्वयं में डाउट आएगा तो कभी बाबा पता नहीं मुझे शक्ति दे रहा है, मैं योग तो कर रहा हूँ लेकिन मेरा ये कार्य पूरा होगा कि नहीं। कई लोग जब योग करते हैं, फलाने के लिए योग करना है, उसके लिए योग करना है, फलाने संबंधी कष्ट में उसको योगदान देना है, लेकिन कुछ समय तक करने के बाद भी जब रिजल्ट नहीं मिलता है तो पता नहीं बाबा कर रहा है नहीं कर रहा है, तो ये बाबा के प्रति निश्चय बुद्धि है। एक बार किसी ने पूछा कि पूछा नहीं एक बार किसी ने अपने कोई खास मित्र संबंधी था उसके प्रति, वो बीमार था तो उसके प्रति योगदान देना चालू किया। एक साल तक योगदान देता रहा लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो फिर जो है मधुबन बाबा के बेहद के घर में आए और मन के अंदर यही भावना थी कि मैं एक साल से योग कर रहा हूँ लेकिन पता नहीं उस आत्मा को टच हो रहा है नहीं हो रहा है, उसको वो योगदान मिल रहा है नहीं मिल रहा है, पता नहीं बाबा दे रहा है नहीं, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। लेकिन उस दिन बाबा के यहाँ पर अव्यक्त मुरली जो चली, दिव्य बुद्धि के ऊपर मुरली चली थी बाबा की, तो जैसे ही दिव्य बुद्धि पर के आप जो करो मेरा समझ करके जब करते हैं तो नहीं मिलता है, वो बैरियर आ गया मेरेपन का, इसलिए उसको पहुंचता नहीं है। लेकिन जब सारा बोझ बाबा पर दे दो तो बाबा को दे देने से बाबा आपे ही, बाबा जानता है उस आत्मा का पार्ट क्या है, तो मेरा समझ करके उसको मैं ठीक करूं, उसको मैं योगदान दे करके मैं ये करूं, ये जो भावना अंदर आ जाती है तो बाबा के प्रति निश्चय नहीं होता है हमारा। तब हम उस व्यक्ति को जैसे मैं उसको ठीक करूंगा, ये मैंपन का भाव आ गया। तो बाबा की उस दिन मुरली जो चली कि कई बच्चे बाबा को बोझ देते भी है कि बाबा ये बोझ आपका करके देते हैं, लेकिन फिर थोड़े समय के बाद वापस ले लेते हैं, और जब ले लेते हैं तो जो बाबा करना चाहता है वो फिर नहीं होता है। तो इसी तरह से जब उसने ये मुरली चली और उसको जैसे बाबा ने कपाट खोल दिया, तो उस समय बाबा के कमरे में जाकर उसने बाबा से कहा कि बाबा आज से मैं ये बोझ आपको ही दे देता हूँ, मैं उसको ठीक नहीं करूंगा, आज के बाद मैं उसके लिए योग नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको दे देता हूँ, अब आप जो उचित समझो, आप तो उसके तीनों कालों को जानते हैं, और तीनों कालों को जानते हुए जिसमें उसका कल्याण है वो उसको प्राप्त हो, है ना। जैसे ही ये कर करके दूसरे दिन अमृत वेले उसने बाबा को समर्पित किया, सारा बोझ हल्का हो गया, मन हल्का कर दिया, और बाबा जो करेगा वो कल्याण ही होगा ये सोच करके अपने मन को हल्का कर दिया। तीसरे दिन जिसके लिए योग किया था इतना एक साल तक, उसने शरीर छोड़ दिया, माना एक साल तक वो उसको खींच रहा था अपने विचारों से कि मैं उसको योगदान दे करके ठीक करूं, और जैसे ही उसने शरीर छोड़ दिया तब उसको बाबा ने जैसे अनुभव कराया कि उसका कल्याण नए शरीर लेने में ही था, क्योंकि इस शरीर से जो बाबा उससे कराना चाह रहे थे वो नहीं हो रहा था, और इसीलिए अब जब तुमने बाबा को दे दिया और ये समर्पित कर दिया बुद्धि को कि बाबा जो करेगा उसमें कल्याण है, ये पहले क्यों नहीं किया, ये महसूस कराया उसको बाबा ने, उसने अपना अनुभव शेयर किया, और फिर उसने कहा कि कई बार हम बाबा को देते ही नहीं है, जब बाबा को देते ही नहीं है तो बाबा के प्रति हम निश्चय बुद्धि कहाँ से हुए है। तो निश्चय बुद्धि माना बाबा को सौंप देना, बाबा को दे देना, और बाबा ही उसका जो करेगा कल्याण ही करेगा। अकल्याण कभी कोई आत्मा का हो नहीं सकता है संगम युग में ज्ञानी तू आत्मा का, क्योंकि बाबा कल्याणकारी है, समय कल्याणकारी है, युग कल्याणकारी है, तो अकल्याण कहाँ से होता है। लेकिन कभी कभी हम अपने संकल्पों से जब किसी को खींचते हैं तो हम अकल्याण उसका कर रहे हैं। तब उसको महसूसता हुई कि एक साल जो मैं उसको योगदान देने का प्रयत्न कर रहा था, माना एक साल तक जो दुख दर्द की भोगना उसने एक्सपीरियंस किया, मेरे संकल्पों के कारण किया। तो बाबा जानी जाननहार है, त्रिकालदर्शी है, बाबा हर आत्मा का पार्ट बहुत अच्छे से जानते हैं, इसीलिए जब बोझ बाबा को देने के लिए बाबा ने कहा तो निश्चय बुद्धि हो करके बाबा को सौंप दो, बाबा जो करेगा अच्छा ही करेगा, कल्याण ही करेगा, किसी आत्मा का कल्याण नहीं करेगा, ये हमें स्पष्ट होना चाहिए बुद्धि के अंदर। ये है निश्चय बुद्धि विजयंती। ड्रामा में निश्चय हर सीन को देखते हुए, भले वो सीन कैसी हो लेकिन वो सीन को देखते हुए भी निश्चय बुद्धि, और तो स्वयं में निश्चय, बाबा में निश्चय, ड्रामा में निश्चय, परिवार में निश्चय, निश्चय बुद्धि ही विजयंती, जिसमें कोई प्रकार का सूक्ष्म मात्र भी संशय स्वार्थ अनुमान न हो तब कहेंगे ये निश्चय बुद्धि है। तो ऐसे निश्चय बुद्धि जो बनते हैं वही समर्पित बुद्धि, बुद्धि को सरेंडर कर दिया। बाबा कल्याणकारी कल्याण करेगा ही, मैं उसको योगदान, मैं अपना ही योग के माध्यम से विकर्मों को विनाश करती जाऊं। शुभ भावना जरूर रखो, शुभ भावना शुभ कामना रखना बुरी बात नहीं है, शुभ भावना शुभ कामना जरूर रखो, लेकिन कल्याणकारी बाबा उसके भाग्य विधाता है और वो जानता है कि उसका कल्याण किस में है। तो इसलिए शुभ भावना का सहयोग जरूर दे, लेकिन मैं बाबा के कार्य में उसको योगदान देकर कहीं रुकावट तो नहीं डाल रही हूँ, ये मुझे देखना बहुत जरूरी है। और जो ऐसे सरेंडर बुद्धि बन जाते हैं वही समर्थ बुद्धि। समर्थ बुद्धि माना सशक्त बुद्धि, शक्तिशाली बुद्धि, पावरफुल बुद्धि। इसलिए बाबा की एक अव्यक्त मुरली के अंदर बीच में आया था कि नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल हो। ये देखो अपने साथ, नॉलेज को धारण किया है तो पावरफुल बनते जाते हैं। तो इसीलिए नॉलेजफुल ही पावरफुल हो जाते हैं। समर्थ बुद्धि, शक्तिशाली बुद्धि, सशक्त बुद्धि बन करके वो जैसे हर कार्य करते हुए दृढ़ता संपन्न अभ्यास करते, यही उसकी रियल तपस्या है। तपस्या का मतलब क्या है? तपस्या माना दृढ़ता संपन्न अभ्यास। जो हम अभ्यास करते हैं दृढ़ता के साथ, जब उसका अभ्यास करते तब उसमें सफलता प्राप्त होती है। तो इसीलिए दृढ़ता संपन्न अभ्यास होगा तो रिजल्ट जरूर मिलेगी, क्योंकि वो समर्थ बुद्धि जो सोचते हैं वो प्रैक्टिकल हो जाता है। तो इसीलिए दिव्य बुद्धि माना हंस बुद्धि, हंस बुद्धि माना स्थिर बुद्धि, उसका पहला लक्षण स्थिरता आ जाती है। स्थिर बुद्धि माना प्रीत प्रभु प्रीत बुद्धि, और प्रभु प्रीत बुद्धि जो है वो निश्चय बुद्धि, और निश्चय बुद्धि ही समर्पित बुद्धि। कोई भी व्यर्थ नहीं चलता है, और जब ऐसी समर्पित बुद्धि है तो सशक्त बुद्धि समर्थ बुद्धि उसकी बन जाती है। तो इसीलिए ये दिव्य बुद्धि के वरदान को यूज करने के स्टेप्स है कि जिससे हम उस सर्वोच्च स्थिति तक पहुंच सकते हैं। तो ऐसी अपने दिव्य बुद्धि के वरदान को हमें यूज करना है, और समर्थ बुद्धि सशक्त बुद्धि बन करके बाबा के सच्चे मददगार बन करके चलना है। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।